الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الوفاء. پچھلے چند دنوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کی قدر کر لو پانچ چیزوں سے پہلے. آپ نے فرمایا کہ وقت کی قدر کر لو مصروفیت سے پہلے، مال کی قدر کر لو فقر سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، بے فکری کی قدر کر لو مشکلات سے پہلے، اور پانچویں چیز فرمائی کہ زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. کل کی مجالس میں اور پچھلی ایک دو مجالس میں ہم نے اس حدیث کے آخری حصے پہ گفتگو شروع کی کہ زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، اور کل کی مجلس میں ہم نے زندگی کی قدر کیا ہے، کہ انسان کیسے زندگی کی قدر کر سکتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ مشائخ کا قول یہی کہ زندگی کی قدر یہی ہے کہ جتنا وقت اس میں سے نکال لیا جائے عبادت کے لیے، جس نے زیادہ عبادت کی وہی قیامت کے دن کامیاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ اس لمبی عمر کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دے. تو کل کی وجہ سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اس عبادت کو اکٹھا کرنا ہر طرف اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں، بہت ساری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف، اور ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ذریعہ معاش کا کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا، اولاد کی تربیت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو نبھانا، نوکری کو صحیح طرح سے کرنا، آگے کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. مگر انسان ان تمام چیلنجز میں سے اپنے لیے کئی مرتبہ بہت ساری چیزوں کا انتظام کر لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں سے بہت سارے مال کی سیونگ کر لیتے ہیں، اور کسی نہ کسی وقت وہ مال ظاہر ہوتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اور کل ہم نے ایک مثال بھی دی تھی ایک شخص کی کہ جس نے زندگی اپنے ایک دوست کے ساتھ گزارتی کاروبار کے ساتھ ہوتی، مگر اس دوست کو بہت عرصے بعد جا کے پتا چلا کہ جی اس نے اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ اس نے چار گھر خرید لیے ہیں. تو انسان کئی مرتبہ مال اکٹھا کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے، سارے دنیا کے جھمیلوں کے باوجود اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. کچھ لوگوں کو علم میں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو اللہ ان کو کافی سارا علم دیتے ہیں، وہ کافی سارا علم کے لیے تگ و دو کرتے ہیں خاموشی سے، مگر کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ جی ماشاءاللہ بہت ساری ڈگریاں ہیں، تین ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، چار ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، دو پی ایچ ڈیز کی بھی ہیں، اس طرح سے صاحب جی عالم بھی ہیں مگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں. تو کئی مرتبہ انسان خاموشی سے علم جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے، کئی مرتبہ انسان خاموشی سے دولت جمع کر لیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو خاموشی سے عبادت جمع کر لیتا ہے. तो जब और चीजें खामोशी से जमा हो सकती हैं, तो ये भी खामोशी से जमा हो सकती है। सच्ची बात यह है कि इबादत को खामोशी से जमा करना सबसे आसान काम है। इबादत के लिए चाहिए ही खामोशी। और मशायख ने तो ऐसे रास्ते बता दिए, इंसान अपने काम काज के दौरान भी इबादत को जारी रख सकता, कि अल्लाह की याद सिर्फ जुबान से नहीं की जाती, दिल से भी की जाती। तो जिसने जहनी तौर पे फैसला कर लिया कि जी मैं अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूं, तो उसके लिए उसकी नौकरी, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी दूसरे दुनिया के चैलेंजेस इबादत में रुकावट नहीं बनते। इबादत नहीं करने की वजह वक्त की कमी नहीं है, इबादत नहीं करने की वजह दिल का ना चाहना है, दिल रेडी नहीं है। और दिल जो रेडी करना है वो माहौल से, नेक सोहबत से होता है। नेक सोहबत में आना जाना होगा, इबादत की सोहबत में आना जाना होगा, तो इबादत इंसान खूब करे। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हुक्म फरमाया, वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यदउन, आप अपने आप को भी उनके साथ जोड़े रखें जो खूब इबादत करते हैं। तो नेकों के साथ नेक मजालिस में आना जाना, तो इबादत के रास्ते खुलेंगे। दिल इबादत करने को करेगा, और अगर नेक मजालिस में आना जाना नहीं हो, फिर दिल तैयार ही नहीं होगा। जितने फजाइल सुन ले इबादत, दिल जो है वो दूसरे कामों में मशगूल होने को ही पसंद करेगा। तो इसलिए इस दिल की तब्दीली नेक सोहबत में आती है। जितना ज्यादा नेक माहौल नसीब होगा, उतना ज्यादा इबादत का शौक नसीब होगा। इसलिए जो नेक मजालिस में आना जाना है, तो कुछ लोग बहुत ही हल्की सी चीज समझते हैं, मगर ये इतनी हल्की चीज नहीं। सबसे ज्यादा दीनी कामों के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज दिल का बदलना नेकों की सुहबत में ही होता है। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाले थे, हजरत मौलाना अल्लाह, हजरत मौलाना अलाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह, सिलसिलानिया नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्ग थे, शेखपुरा के रहने वाले थे। तो आलिमुद्दीन फरमाते हैं कि मैं हजरत की खिदमत में, हजरत की मजलिस में वक्तन फवक्तन जाता था। सफर था काफी, कई मतलब 1-1.5 घंटे का सफर अपने शहर से शेखपुरा जाने में लगता, मगर मैं चले जाता, हफ्ते बार मजलिस अटेंड करता था हजरत के पास। अगर कभी मिस होती, कभी होती, सफर बहुत लंबा था, तो मजलिस में आना जाना रहता, मगर आमाल इतने ज्यादा नहीं करता था। मजलिस में आना जाना भी टूटा फूटा था, आमाल भी टूटे फूटे। तो फरमाते हैं कि जी 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ता था, मगर दिल में एक परेशानी सी रहती थी कि जी तहज्जुद जो है मेरी कभी भी पाबंदी से नहीं हुई। 1-2 दिन पढ़ूंगा तो 2-4 दिन के ना गए, फिर 2-4 दिन पढ़ूंगा तो फिर 2-4 दिन के ना गए, कभी 1 दिन पढ़ा तो कभी 3 दिन पढ़ा। कहते सालों गुजर गए, तहज्जुद की पाबंदी नसीब नहीं। कहते कि एक मरतबा हजरत के मजलिस में हाजिर हुआ, और पहली मरतबा हजरत ने मुझे फरमाया कि मैं रात यहाँ पे रह जाए। लेकिन मुझे ऊपर बड़ा बोझ पड़ा कि हजरत ने ये कभी फरमाया नहीं है, और सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया, सुबह तो मैंने क्लास भी पढ़ानी है, बहुत ही मसला है। बल्कि हजरत ने तो फरमाया, अच्छा मुझे याद है, हजरत ने फरमाया 3 रातें हो, 3 रातें हो। लेकिन बहुत बोझ हुआ मेरे सर पे, ये बड़ा इजी होता था खामोशी से, जब भी चाहता जिस मजलिस वाले दिन, यानी हफ्तावार मजलिस में कभी 1 हफ्ते आता, 1-2 हफ्ते नहीं आता, आके चले जाता, कभी किसी किस्म का बोझ नहीं था। हजरत भी खुशी खुशी मिलते थे, सलाम किया, निकल गए। अचानक से हजरत ने फरमाया मैं 3 दिन यहाँ खानकाह पे गुजारू, अब पीछे फैमिली को क्या बताऊं, जिस मदरसे में पढ़ा रहा हूँ उनको क्या बताऊं, और तबीयत भी ऐसे खानकाह में, जहर बंदे को अपने घर में रहने में जरा आसानी रहती है, अब 3 दिन खानकाह में कैसे रहूंगा और क्या होगा। तो कह रहे थे कि दिल तो यही चाह रहा था कि हजरत से, उसके हजरत माजरत फरमा दे, फिर तैयारी करके जब आऊंगा तो रहे हुए होंगे, इस वक्त तो तैयारी जहन बना हुआ नहीं था। मगर कहने लगे कि इतने सालों में पहली मर्तबा हजरत ने कोई हुक्म दिया है, मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ अदब की वजह से मैंने कहा अच्छा ठीक है रह जाते, हजरत आप फरमा रहे तुम्हें 3 रातें यहाँ गुजार ले। कहने लगे 3 रातें खानकाह पे गुजारी, खानकाह पे माहौल इबादत का, तो 3 रातें थी, 3 दिन भी वहीं थे, हजरत की सोबत में वक्त भी गुजरता था, मजालिस भी हो रही थी, इबादत में भी वक्त गुजरा। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं थी जो मैं समझ रहा था कि जी हजरत ने मुझे रोका है तो मेरे से कोई बातचीत करेंगे, कोई खास किसी मकसद के लिए, जैसे बस ऐसा लग रहा था कि मकसद यही है कि 3 दिन जरा ज्यादा इबादत करनी है, तो वो मैंने कर ली, माहौल सारा खान का भी यही हो रहा है। यानी लगे 3 दिन बाद मैं हजरत की खानकाह से शेखुपुरा से वापस अपने शहर आ गया। जैसे ही पहुंचा अपने घर तो पीछे से कॉल आई कि हजरत का इंतकाल हो गया। कहते अफसोस तो बहुत हुआ, 1 साल पुराना ताल्लुक, मगर साथ साथ दिल को एक इत्मीनान हुआ कि अल्लाह अकबर, अगर मैं हजरत को मना कर देता तो आज मुझे बड़ा अफसोस था कि जी आपने दुनिया से जाने से पहले जो मुझे एक बात कही मैं वो भी ना कर सका, तो शुक्र है कि आपके कहने पे मैं ये 3 रातें हजरत की खिदमत में गुजार के और आ गया। फिर वापस भागा जनाजे के लिए, शिरकत हो जाए हजरत के मुबारक जनाजे में। फरमाने लगे कि 3 दिन खानकाह में गुजार के आया और अल्लाह अकबर, जिंदगी 5 साल 15-17 साल से कभी तहज्जुद पाबंदी से नहीं हुई, इस 3 रातों की बरकत ये थी, इस सोहबत की बरकत ये थी कि अगले 3 साल पाबंदी से तहज्जुद की नमाज। तो जिंदगी की कदर तो यही है कि इबादत करनी है, मगर ये इबादत हर एक को नसीब नहीं, इबादत करने के लिए जो रास्ता है वो नेक सोहबत का है, वरना कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों में घिर जाएंगे और इबादत को सेकेंडरी रोल देंगे, और कुछ लोग गफलत में, गुनाह में, ख्वाहिशात में घिर जाएंगे। तो जहन में इबादत की कुछ ना कुछ अहमियत तो होगी, मगर इबादत कर नहीं पाएंगे, इबादत वही करेगा जो नेकों की सोहबत आएगा, जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा, जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर, और जहां आग जलती है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े जलाकर। जैसी सोबत होगी वैसा मामला होगा। अल्लाह हमें मौत से पहले जिंदगी की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم.